यह प्रवचन हिज ग्रेस कृतु महाराज जी द्वारा 9/10/2010 को नैमिषारण्य में दिया गया है, जिसका विषय है वैष्णव सदाचार।
ते वैष्णव सदाचार बुक में से मैं पढ़ता हूँ और कुछ समझाता हूँ, कुछ आपको बताएंगे कि ये आपको करना होगा, करना चाहिए। आप सब वैष्णव हो, दीक्षित भक्त हो, इसलिए ये सब आपको सुनना चाहिए। गोपी ड्रेस 12 साल तक पहन सकते हो, बाकी गोपी ड्रेस वर्जित है, नो गोपी ड्रेस। और ये व्हाइट डिवोटीज की बात कर रहा था, हमारे जमाने में, प्रभुपाद के जमाने में किसी का सर आधा भी नहीं होगा। तो देखा होगा आपने के व्हाइट डिवोटीज, दे कीप देयर हेयर्स इन अ कवर। और कहाँ कहाँ आपने स्पिरिचुअल ड्रेस पहनना है वो ऊपर बताया गया, मंदिर में आने वाले भक्तों और रविवार कार्यक्रम और सत्संग, भक्ति वृक्ष, भक्तों का जहाँ एक दूसरों से मिलना हो वहाँ सभ्यता है, सभ्यता। और हमारा नेशनल ड्रेस और नेशनल संस्कार हमारे भारतीय संस्कार है। अभी ये जसोदा नंदन मुझे कह रहे थे कि स्त्रियों का दुनिया का ड्रेस एक सा होता जा रहा है, टाइट टाइटी और ऊपर शॉर्ट स्कर्ट और क्या क्या नहीं पहनते हैं, है ना? तो नो टाइटी। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो, आधुनिक पोशाक के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने, आपके वस्त्र ठीक रीत अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र के फुवारे, सेंट एवं अन्य श्रृंगार की आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग न करें। समझ में आ गया? सिंपल सरल। सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतः मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र न पहने। एक दिन में वस्त्र धुलाई के लिए निकल जाना चाहिए, फिर से अगेन एंड अगेन सेम वस्त्र परिधान नहीं करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाली निम्नलिखित बातें के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। तिलक लगाने की विधि श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत 4:12:28 के तात्पर्य में लिखते हैं, तिलक के संबंध में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा पर्याप्त है। तो तिलक भी गोपी ब्रांड का जो तिलक आता है, गोपी चंदन, वो गोटी आती है, वो तिलक नहीं चाहिए, सुगंधित। वो उसमें तिलक होता है नहीं होता है क्या पता है, होगा फिर भी हमें बना बना नहीं चाहिए। हमें मिट्टी, मिट्टी का ढेला मिलता है जो गोपी तालाब द्वारिका के नजदीक, गोपी तालाब है जहाँ गोपियों के साथ भगवान स्नान किया और उनके शरीर की जो रज मिलावट वाली जो मिट्टी है वो गोपी तालाब की मिट्टी से हम गोपी चंदन कहते हैं उनको, गोपी तिलक। वो ओरिजिनल चाहिए, वो 5 रुपये का जो आता है, 10 रुपये का ब्रांड गोपी तिलक रैप किया हुआ, वो नहीं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन यदि संभव हो तो कुश घास की चटाई पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड अथवा विष्णु तिलक लगाएं। तिलक कैसा होना चाहिए? ये त्रिपुंड और ये ऊर्ध्व पुंड। ऊर्ध्व पुंड तो 12 ललाटे केशवम ध्यायेत नारायण मथोदरे वृक्षस्थले माधवम च गोविंदम कंठकुहरे विष्णुम च दक्षिणे कुक्षो तद्माहो मधुसूदनम त्रिविक्रमम कंदरेव च वामनम वाम पाक्षके श्रीधरम बाहुके वामे ऋषिकेशम च कंदरे पुष्टे तु पद्मनाभम च कट्या दामोदरम न्यसेत। और बाद में बाकी का सिखा पर अगर है तो सिखा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्यूटीफुल तिलक मीन्स ब्यूटीफुल फेस। तिलक से आपका चेहरा सुंदर लगता है और सुंदर तिलक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मत करो, ऐसा चिन्ह और ऐसे लगा दिया ऐसे लगा सुंदर तिलक करो सुंदर। और तिलक के बाद बीच में कपड़ा सुंदर एक बारीक कपड़ा लेके ये इतना बारीक कपड़ा लेके उनको पानी में भिगो के ऐसे ऐसे कपड़ा से बीच वाला पोर्शन निकाल दो और ये सुंदर तुलसी दल होता है वैसे नीचे तुलसी दल। तो ये तिलक जो है सब वैष्णव करते हैं, वैष्णव के लिए यू तिलक। और ये जो है गौड़िया वैष्णव की 500 डिफरेंट काइंड ऑफ तिलक होते हैं, रामानुज और ऐसे या बीच में रेड, खाली रेड, ऊर्ध्व रेड, कहीं कहीं तो हमारा श्यामानंद, ये श्यामानंद का तिलक है। राधा रानी ने अपने घुंघरू से अपने घुंघरू से श्यामानंद को तिलक किया था। सो वो तिलक हमारे संप्रदाय में प्रचलित है। तो ऐसा सुंदर तिलक करना चाहिए, ऐसे वैसे नहीं, सुंदर ब्यूटीफुल तिलक मीन्स ब्यूटीफुल फेस। केश बाल पुरुष ब्रह्मचारी एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए, बच गए। एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। और स्त्रियों को बाल काटना नहीं चाहिए, यहाँ लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूं। स्त्रियों का बाल काटने का मतलब है, सॉरी माफ करना, कि उनके पतिदेव नहीं है, वही मतलब होता है ना। स्त्रियों का बाल कब कटता है? जब पतिदेव, ये पुरानी प्रणाली का है, अभी तो कोई प्रणाली नहीं है, अभी बाप कट। तो स्त्रियों को बाल काटना नहीं चाहिए अगर वो सुहासिनी, सुहासिनी का मतलब है जिनका पति जिंदा है, उनको बाल नहीं काटना चाहिए। ये वैष्णव सदाचार। आगे बढ़ते हैं। कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव न होकर केवल वैष्णव की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। नाके तिलक गले कंठी साथ में लिए परार बाला। तो ऐसा नहीं, वैष्णव का श्रृंगार है, वैष्णव का श्रृंगार है कंठी माला और शरणागति का सूचक है। मैं कृष्ण की, कृष्ण का हूं, शरणागति सूचक है। कुछ भक्त पूजा जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़े से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय सब यात्रा में जाते समय या सोच इत्यादि के समय इन्हें निकाल देना चाहिए। प्रसादी की माला ये तीन जगह निकाल देनी चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। सो नियमित रूप से कंठी माला पहनने से क्या होता है? चार चीजें, बुरे सपने नहीं आते और यमदूत नहीं आते। नियमित रूप से कंठी माला सभी दीक्षित भक्तों के लिए दुहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए। ऐसा नहीं कि अंदर मुझे चुभती है, कुछ नहीं चुभता, आपको शर्म लगती है। और कंठी माला में ये चार अंगुली जाए, बस इतना, ऐसे ऐसे चार अंगुली अंदर जाए, इतनी ढीली होनी चाहिए। तो छुपाने की कोशिश मत करो कंठी माला। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे एवं दीक्षा लेने के इच्छुक है, उन्हें भी कंठी माला पहननी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं चार नियमों का पालन नहीं कर रहे उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। दाढ़ी एवं मूछे, जो भक्त दीक्षित है अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है उन्हें दाढ़ी एवं मूछे नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं एवं चातुर्मासी के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते हैं। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित चरणों कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है। तो लंबे बाल मत रखो पुरुषों के लिए, जितना हो सके चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा से परिणाम स्वरूप होते हैं, यह जानने हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो तब तक चमड़े की चंपल एवं जूते का प्रयोग न करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैले, पर्स, कमरपट्टी, बेल्ट अथवा घड़ी के पट्टों का प्रयोग भी न करें। तो हो सके तब तक ये चमड़ी के साधन स्वच्छता एवं पढ़ लेते हैं। स्वच्छता, जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हो। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। मैं आगे बढ़ता हूँ। मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रह के समक्ष सभी भक्त वृंद का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अतः उपयुक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। दो, केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाएं। वैष्णव सॉन्ग बुक, वैष्णव आचार्यों के भजन है, वैष्णव आचार्यों के गीत, बस इतना सीमित। इसके आगे जाना है तो भक्ति विनोद ठाकुर ने चार गीतावली वगैरह का भजनों का संकलन किया है और नरोत्तम दास ठाकुर ने भी ये वैष्णव आचार्यों के गीत के बावजूद और भी उनके कई भजन हैं। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, प्रार्थना की किताब में बहुत से भजन है, तो ये भजनों से सीमित सब भजन गाए। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों बाहर के भजन नहीं, खिचड़ी नहीं ये भजनों में। खिचड़ी क्या है कि कष्ट मिटे तन का, सौ सुख संपत्ति घर आए, और कष्ट मिटे तन का। और भगवान श्री कृष्ण को भी देव देवताओं के बराबर भजन होते हैं, तो हमें खिचड़ी नहीं चाहिए, हमें शुद्ध भजन चाहिए जो कृष्ण प्रेम दिलाए, है ना। कई भजन होते हैं जिसमें कहीं कहीं माग होती है, तो हमें खिचड़ी नहीं चाहिए, हमें शुद्ध वैष्णवों का शुद्ध कीर्तन चाहिए। ये शुद्ध भक्त थे सब, भक्त विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, गोविंद दास, कृष्णदास कविराज, कई कई हमारे संप्रदाय में कवि बने हैं उनका ही, क्योंकि उसमें खिचड़ी नहीं मिलेगी। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए। कैसे भजन को गाना चाहिए? जैसे लीडर जो कीर्तन करवाता है उनके राग में गाना चाहिए, नहीं पंचम स्वर में ले जाए, एकदम ट्यून लय में होना चाहिए सब कुछ। सभी भक्तों को एक ही स्वर में अत्यंत उत्साहपूर्वक गान करना चाहिए। मृदंग करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए, प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य के वेग को कम ज्यादा करके सदैव मेल बैठाते रहे। अतः करताल तथा मृदंग को का अति कुशल होना आवश्यक है। हमारी संस्था कीर्तन के लिए मशहूर है, वैसे भी बंगाल का कीर्तन भजन कीर्तन मशहूर है। प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम निम्नलिखित प्रकार से हो: संसार धावनल प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र, हरिहराय नमः। कीर्तन का लगभग आधा भाग हरे कृष्ण मंत्र का गायन होना चाहिए, आवश्यक है। हरे कृष्ण महामंत्र का गान, ये सब दूसरे जो मंत्र है उनसे आधा होना चाहिए। प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरु अष्टक, नृसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाओं की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जानी चाहिए। लोग कीर्तन हाथ में आ गया, माइक्रोफोन हाथ में आ गया, बस ऐसा नहीं, समय सूचकता रखनी चाहिए। तुलसी आरती एक लाइन, गुरु अष्टक एक लाइन, तो ये सब ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र हो, और समय के लिए भी हमें एक लाइन करना है, नहीं तो लंबा प्रोग्राम हो जाए। जहाँ एक से अधिक मृदंग अथवा करताल वादक है वहां वादकों को एक दूसरे के सुरों का सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। कीर्तन केवल उच्च स्वर में करना ही पूर्णता नहीं है, अर्पित उसे सुर ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। खाली ऊंचे स्वर कीर्तन ही सुंदर कीर्तन नहीं, मधुर स्वर उत्साह से ताल में लय में कीर्तन होना चाहिए। और डांस नृत्य आगे यही है, नृत्य। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विग्रहों के समक्ष नृत्य करना सीखना चाहिए। तो कीर्तन में आपको दो चीजें करनी है, दो चीजें क्या, एक तो नृत्य या तो वाद्यंत्र बजाओ, कुछ वाद्यंत्र बजा रहे हैं या तो नृत्य करें कीर्तन में आवश्यक। और नृत्य बहुत ढंग से करना चाहिए, सुंदर ढंग से, प्रभुपाद स्टेप्स जो होते हैं, और सुंदर भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करना है, नहीं कि दूसरों की, मैं कितना अच्छा लगता हूँ या मैं कितना सुंदर नाच रहा हूं, ऐसे पंजाबी स्टाइल गुजराती स्टाइल नहीं चाहिए, वैष्णव स्टाइल चाहिए, है ना, वैष्णव स्टाइल। दूसरा, ये नृत्य आनंददायक तथा उत्साही होने चाहिए, परंतु वे दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले ना हो, जैसे दो हाथ पकड़ के दो घूमते हैं और किसी के ऊपर गिरते हैं, ये वर्जित है, ये बिल्कुल वर्जित है। श्रील प्रभुपाद द्वारा स्वयं के उदाहरण से दिखाए गए पारंपरिक गोड़िया पद्धति से नृत्य करना आदर्श है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के कीर्तन किया जाता है, जैसे भक्तों की पंक्ति आमने सामने कीर्तन करती हुई एक दूसरों के पास आकर पुनः दूर चली जाती है, विग्रहों के सामने मुख करके एक के पीछे एक इस तरह भक्तों की पंक्ति कीर्तन करती हुई विग्रहों की दिशा में कुछ कदम तथा विग्रहों की विरुद्ध दिशा में कुछ कदम चलाती है, ऐसे जाना ऐसे विग्रह की ओर, विग्रह के सामने मुख करके, हाँ, भक्त गोल गोल घूमकर कीर्तन करते हैं। इन सभी प्रकारों में पंक्ति तथा अन्य बातें व्यवस्थित अच्छी तरह रहे, इसका भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, अपने नृत्य से दूसरों को हानि ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। छह, अनेक प्रकार से कीर्तन करने हुए भक्तों को साथ देने के लिए आवश्यकता अनुसार हाथ उठाना चाहिए अथवा ऊपर नीचे करने के लिए साथ देना चाहिए। यह कीर्तन कोई दर्शनीय दृश्य नहीं है, तमाशा नहीं है, अतः भक्तों को उसे देखते हुए एक ही जगह पर रुके नहीं रहना चाहिए, सभी को उसमें सहभाग लेना चाहिए। फिर भी जिन्हें कीर्तन में सहभागी होने की इच्छा नहीं है, विशेष रूप से अतिथि, नए भक्त अथवा बीमार भक्त, ऐसे लोगों से आग्रह करने में जबरदस्ती न करें। आठ, यदि किसी विशेष प्रकार से नृत्य करने से अन्यों को कष्ट होता हो तो वैसे नृत्य न करें, जैसे दो भक्तों का हाथ पकड़कर वेगपूर्वक गोल घूमना, फूंगड़ी, ये नहीं करना चाहिए, पूरा हाथ बाहर निकालकर स्वयं गोल घूमना, ऐसे ऐसे निकाल के गोल घूमना, छोटे बच्चों को तथा बड़ों को भी हवा में ऊपर उठाना अथवा फेंकना, ये भी गलत है। गोलाकार कीर्तन करते हुए एक दूसरे को धकेलना, ये भी गलत है। स्त्रियों तथा पुरुषों को मंदिर के अलग अलग भाग में कीर्तन करना चाहिए, स्त्री और पुरुष अलग अलग, नहीं तो फिर श्री कृष्ण का रास डांस हो जाएगा। कीर्तन का प्रतिनिधित्व करने वाले की ओर सदा ध्यान दे तथा उसी प्रकार का कीर्तन करें। 11, चैतन्य महाप्रभु की नृत्य शैली में हाथ उठाकर उत्साह पूर्वक तथा भक्तिभाव से नृत्य करना परिपूर्ण कीर्तन है, ऐसे जैसे गौर निताय होते हैं ना, तो ये ऐसे कीर्तन करना चाहिए। आगे किसी को कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? ये हमारे इस्कॉन की यूनिटी के लिए हम आपको बता रहे हैं, कहीं भी जाओ इस्कॉन एक लगेगी आपको, तो इसलिए सर वैष्णव सदाचार जरूरी है। ओके, प्रसाद सेवन और वितरण, कुकिंग रिलीजन। वैष्णव संस्कृति में प्रसाद सेवन और प्रसाद वितरण ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और उसमें ही हम गलती करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा गलती। क्या गलती? मैं पहले बैठ जाऊं, या तो सेवा कौन करेगा, या तो टेढ़ा मेढ़ा बैठना, या तो कोई बैठा है उनके पीछे या उनके आगे बैठ जाना, वगैरह वगैरह। देखिए क्या लिखा है। एक, जिस समय हम भोग बनाते हैं और अर्पित करते हैं उस समय की अपेक्षा, उसे आदरपूर्वक वितरित और ग्रहण करते देखकर श्री कृष्ण और गुरु अधिक प्रसन्न होते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादान तृप्तान हरि भक्त संगा, हरि भक्तों के साथ और हरि भक्तों को प्रसाद ग्रहण, प्रसाद सेवा करते जब गुरुदेव देखते हैं तो उनको तृप्ति हो जाती है। स्वादान तृप्तान हरिभक्त संगान कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव, तो ये प्रसाद ये भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। एक सर्वप्रथम एवं प्रमुख नियम यह है कि भक्तों को केवल प्रसाद अर्थात भगवान श्री कृष्ण को भक्ति भाव से अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। भक्तों को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अर्पित अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। भक्तों को, भक्तों द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा भगवान को अर्पित की गई, भक्तों द्वारा परोसा गया अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। सामाजिक जीवन की मर्यादा व प्रचार की आवश्यकता के अनुसार जितना संभव हो उतना व्यवहार करने योग्य हो, उपरोक्त नियमों के आदर्श का पालन करें। भक्तों द्वारा बनाई गई, भक्तों द्वारा अर्पित की गई भगवान को और भक्तों द्वारा परोसी गई। तीन, जब तक प्रचार तथा सेवा के लिए अत्यधिक आवश्यक न हो तब तक अभक्त द्वारा बनाया गया अन्न बिल्कुल ग्रहण न करें। ऐसा क्यों? अन्न बनाने का कर्म अन्न में रहता है, तो जो अन्न बनाता है उनका कर्म आपको लगता है। चार, उपरोक्त भावना से चॉकलेट आइसक्रीम चिप्स बिस्कुट शीतल पेय तथा ब्रेड पाव जैसी बाहरी वस्तुओं को घर में वर्जित करें। घर पर आए अतिथि को भी घर पर बनाए गए पदार्थ तथा नींबू शरबत फलों का रस जैसी प्राकृतिक चीजें ही दें। पांच, यदि संभव हो तो रात को दही एवं मटर बटाना का सेवन न करें। यात्रा में अथवा विकल्प न होने पर चुनी हुई बाजार वस्तुएं खरीदें। बाजार वस्तुओं की अपेक्षा खाने का डब्बा घर पर तैयार खाद्य सामग्री से भरा अथवा फल दाना दूध तथा सूखा हुआ खाद्य पदार्थ साथ में लेना उत्तम है। सात, कभी कभी प्रचार या सेवा के लिए अथवा व्यावसायिक कारणों से लंबे प्रवास के दौरान भोजनालय अथवा होटल में जाना पड़ता है। ऐसे समय में शुद्ध शाकाहारी भोजनालय का ही चयन करें तथा प्याज और लहसुन रहित पदार्थ ही मंगवाएं। मांसाहारी भोजनालयों में एक ही बर्तन में रसोई बनाने की संभावना रहती है। आठ, भक्तों को सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए तथा रासिक अर्थात तैली या अति मसालेदार तथा महंगे खाद्य पदार्थों को टालना चाहिए। नौ, घर पर प्रसाद योग्य विधि से भगवान को अर्पित किया हुआ हो। दस, परिवार के सभी सदस्यों के प्रसाद ग्रहण कर लेने के पश्चात बचा हुआ प्रसाद संभव हो तो अगले भोजन के लिए सुरक्षित रख लें, अन्यथा बाहर जरूरतमंद लोगों में वितरित कर दें। एक, प्रसाद वितरण और प्रसाद सेवन, ये बहुत बड़ा पैसेज है इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रसाद सेवा, प्रसाद वितरण, यदि संभव हो तो दीक्षित भक्त ही प्रसाद का वितरण करें। वितरण करने वाले भक्तों का मन शरीर आदतें और वस्त्र स्वच्छ एवं शुद्ध होने चाहिए। वितरण के समय जितना हो सके उच्च स्वर में बोलने को टालना चाहिए। दो, प्रसाद बांटने का क्रम, सबसे पहले पानी दीजिए। जब गोड़िया वैष्णव प्रसाद बांटते हैं तो वे कटु सब्जी सुक्ता या साग से आरंभ करते हैं, उसके पश्चात दाल या तले पदार्थ जैसे पकौड़े इत्यादि परोसते हैं, उसके पश्चात सब्जी परोसी, पहले रसेदार बाद में सूखी, उसके पश्चात रायता और चटनी, अंत में मीठे व्यंजन। चपाती रह गई, अंत में मीठे व्यंजन चपाती आ रही है। चपाती और चावल आरंभ से अंत तक आवश्यकता अनुसार परोसिए, यदि संभव हो तो चपाती गरम दे। अरे वाह, प्रसाद सेवन। मैंने 90% गरम चपाती खाई, क्योंकि माताजी हमेशा वेरी पर्टिकुलर गरम गरम चपाती उतरे तुरंत सर्विंग। 3, प्रसाद ग्रहण करते समय जूठे हाथों से दूसरे बर्तन को स्पर्श न करें, दूसरों को परोसने के लिए कहें अथवा स्वयं हाथ धोकर अपने लिए परोसें। अगर आप आपके फैमिली में बैठे हो तो सब कुछ चलेगा, लेकिन वैष्णवों का मंदिर में, सत्संग में अथवा ऐसे जगह पर नहीं करना चाहिए। 4, प्रसाद सदैव थाली में खाली स्थान में परोसें। लोग क्या करते हैं, राइस पर दाल ना करें, राइस दाल के ऊपर सब्जी डालेंगे और राइस दाल सब्जी के ऊपर मट्ठा डालेंगे और मट्ठा के ऊपर खट्टा डालेंगे, ऐसे नहीं, अलग अलग व्यंजन सुंदर, ज्यादातर ऐसा होता है। तो कोई चीज पर भी दूसरी चीज नहीं रखनी चाहिए। प्रसाद सही थाली में खाली स्थान में परोसें। मिष्ठान और नमकीन व्यंजनों को अलग अलग परोसें। प्रसाद परोसते समय व्यक्ति के हाथ में न दे, किंतु यदि प्रसाद अत्यंत अल्प है तो हाथों में दे सकते हैं। सूखे मिष्ठान के अलावा सभी प्रकार के प्रसाद को चम्मच द्वारा ही परोसें, यहाँ तक कि नमक भी। 7, केवल दाएं हाथ से ही परोसें। परोसते समय किसी भी दूषित वस्तु को हाथ न लगाएं, जैसे मुंह, पैर, बाल या शरीर का निचला हिस्सा इत्यादि, या जबाई लेना, छींकना या थूके नहीं। अपरिहार्य स्थिति आने पर बाद में हाथ धो लें। 8, जब घर पर अतिथि आए तो भगवान को अर्पित प्रसाद, महाप्रसाद सभी को थोड़ा थोड़ा वितरित करें और तत्पश्चात आवश्यकता अनुसार गरम गरम प्रसाद परोसे। कैसा प्रसाद परोसे, ठंडा ठंडा नहीं, लोग ठंडा ठंडा प्रसाद देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठंडा प्रसाद नहीं। जो गरम चीजें गरम, ठंडी चीजें ठंडी। गुरु और सन्यासियों के लिए इसी रीति से ही प्रसाद परोसे। यदि प्रसाद की मात्रा कम है तो वितरित करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि सभी को समान मात्रा में प्रसाद वितरित करें, किंतु उसे वितरित करते समय उसे अत्यंत उत्साह से वितरित करना चाहिए। 10, संभव हो तो प्रसाद पाने वाले व्यक्ति को प्रसाद के गुण बताएं, परंतु यदि आवश्यक हो तो शांत रहें। इजोली ने जयपताक महाराज उनके मायपुर फेस्टिवल में सब प्रभुपाद डिसाइपल को बुलाते हैं, बाद में सब व्यंजनों का विस्तृत वर्णन करते हैं, ये चीज़ें हैं, सारा नाम और कैसे बनी, क्या है उसमें। प्रसाद अथवा प्रसाद के बर्तनों को पैर से स्पर्श न करें, गलती से स्पर्श होने पर उन्हें दाएं हाथ से स्पर्श कर मस्तक पर लगाएं। 13, प्रसाद वितरित करने वाले बर्तन जैसे बाल्टी को भूमि पर खींचे नहीं और बांटते समय बर्तनों के टकराव की आवाज न करें। 14, प्रसाद के पश्चात स्थान को तुरंत साफ कर दें और गिरे प्रसाद को कूड़ेदान में डाल दें। ज्यादातर जो प्रसाद पा रहा है, प्रसाद पा लिया तो उसके बाद जो अपना जो जूठ है वो सब उठा के अपने प्लेट में उठा के ले जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा छोड़ दो, कोई आएगा साफ करेगा, ऐसा नहीं। सब साफ अपनी जगह बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन कर देनी चाहिए। 15, गुरु का महाप्रसाद नए भक्तों के समक्ष वितरित न करें। 2, प्रसाद सेवन। 1, प्रसाद लेने से पूर्व अपने हाथ पैर एवं मुंह को धोना आवश्यक है। 2, प्रसाद लेने से पूर्व पुरुष अपनी शिखा बांधे, सिर खुला रखे, पैर ढके हो और चप्पल या जूते न पहने। उत्सव में, रथ यात्रा में लोग जूते पहन के बैठ जाते या जूतों पर बैठ के प्रसाद लेते। 3, प्रसाद सदैव स्वच्छ, शांतमय एवं खुले स्थान में ले। 4, प्रसाद लेने के पूर्व योग्य प्रार्थनाओं का उच्चारण करें। महाप्रसादे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे, तो ऐसे प्रार्थनाएं करें। 5, प्रसाद भगवान की कृपा है और भगवान से अभिन्न है, इस भावना से प्रसाद ग्रहण करें। प्रसाद भगवान से क्या है और कौन सी भावना रखना चाहिए? भगवान से अभिन्न है भावना रखनी चाहिए। प्रसाद ग्रहण करते समय यदि प्रचार के लिए आवश्यक हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा शांतिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करते समय बोलना नहीं चाहिए, लोग आके सवाल पूछने लगते तभी सवाल जा, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये कृष्ण की लीला क्या है। वो प्रसाद ले रहा है और उनको सारी दुनिया के सवाल पूछेंगे। प्रसाद के समय बोलना वर्जित, शांति से प्रसाद। और गर्मी खाना भी प्रसाद के समय गर्मी क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करते समय टेप रिकॉर्डर पर प्रवचन अथवा कीर्तन सुनना अधिक लाभदायक है। प्रसाद आधा घंटा होता है लेने में, तो आधा घंटा प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सबको सुनना चाहिए शांत। 6, प्रसाद सेवन करते समय जब वरिष्ठ वैष्णव उपस्थित हो तो उनके प्रसाद ग्रहण करने तक संयम पूर्वक प्रतीक्षा करें, उनके पश्चात ही हमें प्रसाद ग्रहण करना है। कुछ वरिष्ठ परिस्थितियों वरिष्ठ वैष्णव की अनुमति से पहले प्रसाद लिया जा सकता है। ज्यादातर वरिष्ठ भक्त प्रसाद ग्रहण कर ले उसके बाद ही उनका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 7, प्रसाद व्यर्थ न गवाए, यदि थाली में आवश्यकता से अधिक प्रसाद हो तो उसे पहले से ही दूसरी थाली में निकाल कर रखें। 8, प्रसाद लेते समय शरीर के अन्य भागों का स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का स्पर्श करें। 9, प्रसाद लेते समय जूठे हाथों से बर्तनों को स्पर्श न करें एवं किसी अन्य व्यक्ति को परोसने के लिए कहें, यदि कोई न हो तो हाथ धोकर स्वयं ले ले। प्रसाद सेवन आरंभ करने के पश्चात अन्य सभी भी स्थान को दाहिने हाथ से स्पर्श न करें। संभव हो तो सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि और स्नान से पहले प्रसाद न ले। सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त के बाद, मध्य रात्रि और स्नान से पहले। 12, तक जब तक पहले खाया गया भोजन पच न गया हो फिर से प्रसाद न ले। पांव को फैलाकर एवं जंगा पर थाली रखकर प्रसाद न ले। आयुर्वेद के अनुसार अर्ध पद्मासन में बैठकर प्रसाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। संभव हो तो सूर्यास्त, सूर्योदय, मध्य रात्रि और स्नान से पहले प्रसाद न ले। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद, हम थोड़ा भूल सुधार लेते हैं, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय पहले, मध्य रात्रि और स्नान करने से पहले प्रसाद न ले। 15, प्रसाद ग्रहण करते समय थाली में अथवा आसपास न थूकें। 16 रास्ते पर चलते समय अथवा किसी भी तरह की यात्रा में जहाँ दूसरे लोगों की दृष्टि हम पर है, ऐसे स्थान पर प्रसाद ग्रहण न करें। प्रसाद संभवतः एकांत अथवा जहाँ आसपास के भक्त प्रसाद ले रहे हो ऐसे स्थान पर ग्रहण करें। खाने और पीने के नियम, प्रसाद की मात्रा और प्रसाद के बाद, ये जरूरी है, पढ़ लेते हैं। हाथ से खाना चाहिए, लेकिन चम्मच से खाओ तो कोई तकलीफ है नहीं। वैदिक संस्कृति के मुताबिक हाथ से खाना चाहिए। खा सकते क्यों नहीं? खाने और पानी पीने के नियम, खाते समय अथवा पीते समय कष्टदायक आवाज न करें। प्रसाद के स्वाद के बारे में दोष न निकालें। 2 प्रसाद खाने के लिए अपने दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों का ही प्रयोग करें। अंगुलियों से खाना अधिकृत है, क्योंकि पाचन क्रिया अंगुलियों से सूक्ष्मतम स्पर्श से ही आरंभ होती है। शरीर के दूसरे भागों को स्पर्श करने के लिए बाएं हाथ का प्रयोग करें। 3 बाएं हाथ का प्रयोग केवल पानी का गिलास उठाने के लिए करें। गिलास को मुंह लगाकर पानी पीना टालें, ऐसे ऊपर से पीना चाहिए। 4 पानी पीने के बाद भी हाथ धोएं। 5 दाहिने हाथ की अंगुलियों से पदार्थ, चपाती इत्यादि के टुकड़े, बड़े टुकड़े को तोड़कर निवाला ग्रहण करें। तोड़कर निवाला क्या है? बाइट, ग्रहण ग्रहण करें। बाएं हाथ का प्रयोग न करें। 4 प्रसाद की मात्रा, प्रसाद संतुलित मात्रा में और दिन के निर्धारित समय पर ही ग्रहण करें। 2 आवश्यकता से अधिक खाना रोग को निमंत्रित देता है। अत्याहार और आरोग्य पदार्थ स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हानिकारक है। सभी को इस प्रकार से खाना चाहिए कि उदर के आधे भाग में अन्न, चौथाई भाग में जल, चौथाई भाग में वायु। 3 आहार पर नियंत्रण रखने से जीवा पर नियंत्रण रखने में और परिणाम स्वरूप अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रसाद के बाद हरे उठने के पहले विशेष प्रेम ध्वनि का उच्चार करें। जय जय श्री राधे। तो प्रेम ध्वनि उठने से पहले क्या करना चाहिए? जय श्री राधे। 2 प्रसाद सेवन करने के पश्चात अथवा सेवन के पूर्व भगवान की स्तुति हेतु प्रार्थना अथवा श्लोक बोले। 3 यदि अन्य भक्त अभी प्रसाद ले रहे हो तो उनके आदर हेतु कुछ समय प्रतीक्षा करें एवं सभी साथ में ही उठें। ये वैदिक सभ्यता भी है, कोई खा रहा है कोई जा रहा है, ऐसा नहीं। वरिष्ठ भक्तों को पहले अवसर दें। अपरिहार्य परिस्थितियों में वरिष्ठ भक्तों की अनुमति लेकर पहले उठा जा सकता है। 4 तो जब भी प्रसाद लेके उठो बाजू में आजू बाजू अनुमति लेना चाहिए। प्रसाद के पश्चात तुरंत अपने हाथ धोने चाहिए, संभव हो तो पैर भी धोने चाहिए। 5 प्रसाद के तुरंत बाद आराम या अधिक मेहनत का कार्य न करें। 6 प्रसाद लेते समय नाम स्मरण या कृष्ण कथा करके हम जो मन की शांतिमय अवस्था उत्पन्न करते हैं उसे बाद में भी कायम रखें। 7 प्रसाद के बाद जिस स्थान पर बैठे थे उसे पानी से साफ करें। पानी से क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। पानी से साफ न हो तो हाथ से साफ कर लो, जो जूठा है सब कुछ है। उठा। बहुत सुंदर भाग चार है, भक्तों से संबंध व्यवहार, भक्तों के तीन स्तर। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है उसे मानसिक रूप से आदर दे, तथा जो भक्त दीक्षित हैं उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम करें, तथा जो शुद्ध भक्त भगवान की अहितु की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न है, तथा जिसका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित निंदादि शून्य है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार, सभी को प्रामाणिक होना चाहिए, आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश न दें। गुरु के जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार न करें। गुरु के अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न न करें। उनके मन का सही आशय हमें मालूम है, ऐसा विचार करके गुरु के आदेशों का कदापि उल्लंघन न करें। स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश न दें। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनय पूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। जब तक उनकी आज्ञा न मिले तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर न बैठे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र तस्वीर से अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहाँ वहां फेंकना नहीं चाहिए। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता, तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ोगे तो खिचड़ी हो जाएगी। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा। तो गुरु उनके शिष्यों की सेवा करता है। तीन, वरिष्ठ वैष्णवों के साथ व्यवहार कैसे करें। वैष्णव परंपरा में अपने में ज्येष्ठ वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव तथा उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मान देना चाहिए। ज्येष्ठता की श्रृंखला में सबसे ज्येष्ठ गुरु हैं, जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान सम्मान देना चाहिए। इसलिए हम जिस प्रकार श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग्य सम्मान करें। आगे, इनके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना चाहिए। आगे, जब दिन में पहली बार हम सन्यासी को देखें, तब पूरे आदर के साथ साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। मायावादी सन्यासियों का संग हम नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें योग्य सम्मान देना आवश्यक है। इनके पश्चात गुरु महाराज के गुरु बंधु का क्रम आता है, उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनकी ज्येष्ठता किसने पहले दीक्षा ली है इस क्रम से करें। जिन भक्तों ने अपने से पहले हरिनाम दीक्षा ली है उनको भी हमें योग्य सम्मान देना चाहिए। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ हैं उन्हें विशेष सम्मान दें। ज्येष्ठ वैष्णव के उपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना दूसरों को उपदेश न करें। दो वरिष्ठ वैष्णव वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देते समय ज्येष्ठता का विचार करना आवश्यक है। गुरु बंधु भगिनी गुरु भाई बहन से व्यवहार। गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करें, फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं। अतः हमें सेवक रहते हुए दूसरों को प्रभु मानना चाहिए। एनी क्वेश्चन? हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के वरिष्ठ स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए तथा उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए। अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें। जो हमसे कनिष्ठ है उनकी सेवा हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करके प्रोत्साहन देकर तथा ज्ञान देकर करनी चाहिए। हम जब दूसरे गुरु बंधुओं से मिलते हैं तब नीचे झुककर यह प्रार्थना बोलनी चाहिए। कौन से? वेरी गुड। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार न करें। भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परिचयात अवज्ञा इस युक्ति को कभी भी स्थान न दे। अति परिचयात अवज्ञा फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेंट। भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक अपराध रहित तथा छल कपट से रहित होना चाहिए। भक्तों को एक दूसरों के प्रचलित नाम कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। भक्तों को कर्मी नाम से किसी को भी अपनी स्तुति अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बढ़ाई दूसरों को दूसरे भक्तों को सामने नहीं करनी चाहिए। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है। हम जो भी करने के योग्य हैं वह केवल गुरु एवं वैष्णवों की कृपा मात्र से है। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो, जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो, ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथा संभव सहायता करनी चाहिए। संकट के समय आवश्यकता होने पर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। इन घटनाओं के समय उन्हें भौतिक समझकर हमें उन्हें दुर्लक्ष नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, भक्तों के सुख में सुखी और भक्तों के दुख में तो सहायता करनी चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए। कुछ मरण काल है, जन्म काल है, तो प्रसाद उनके लिए बना के टिफिन या घर जैसी जैसी व्यवस्था हो। तो दुख में कौन वैष्णव मेरा मित्र है वो पता चलता है। यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया गई हो तथा काफी दिनों से भक्तों के संग में न हो तो वह माया में है ऐसा कहकर उसका तिरस्कार न करे अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी न करे जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से पुनः दूर चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम उत्साह एवं मैत्री मिलनी चाहिए जिससे उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ जाए। वैष्णव संबोधन, वैष्णवों को कैसे संबोधित किया जाए। श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें, हिज डिवाइन ग्रेस। वैष्णव सदाचार की, वैष्णव भक्त वृंद की।
कथा को विराम देंगे।
हरे कृष्णा।